छठा अध्याय। आह, वज्र के हरे भरे वनों में रहने का आनंद। यमुना मुझे पुकार रही थी और उसके किनारे हर रात एक नए वृक्ष के नीचे सोते हुए मैं पुनः एक बेघर साधु का जीवन यापन कर सकता था। पूंजी के नाम पर मेरे पास केवल तन ढकने के लिए दो चादरें थीं। एकांत फिर से मेरा अंतरंग साथी बन गया। प्रायः मैं चीरघाट पर एक प्राचीन कदम्ब वृक्ष के नीचे सोता था। भगवान के शुद्ध प्रेम के अभिलाषी भक्त चिरकाल से इस पावन स्थली पर आते रहे हैं। वे यहाँ पर कपड़ों की कतरने बांधते हुए प्रार्थना करते हैं कि श्रीकृष्ण उनकी चेतना पर पड़े अज्ञानता के पर्दों को हर लें। कदम्ब वृक्षों को वृंदावन में विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इसके खिले हुए फूल सभी को आनंद से भर देते हैं। गेंदे के आकार का कदम्ब का फूल एक सुनहरी चमचमाती गेंद के समान दिखता है और सैकड़ों छोटे छोटे सुनहरे रेशों से ढके हुए इस फूल की मधुर सुगंध मदोन्मत्त कर देती है, क्योंकि इस फूल का रंग श्री राधा रानी के सुनहरे वर्ण के समान है। इसलिए कदम्ब वृक्ष श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक रात्रि मैं चिरघाट पर इस वृक्ष के नीचे झुककर भक्ति और नम्रता के लिए प्रार्थना करता। फिर मैं नदी के तट पर लेट जाता और अपने तन के नीचे ठंडी मिट्टी की अनुभूति करते हुए नींद में खो जाता। मेरा बिछौना पावन भूमि थी, मेरा कंबल तारों से मंडित आकाश और दूर बजती मंदिर की घंटियां मुझे जगाने वाली पुकार थी। मैं प्रत्येक सुबह 4 बजे अंधेरे में उठ जाता, कृतज्ञता से नदी के तट पर प्रणाम करते हुए पवित्र जल में स्नान के लिए प्रवेश करता। नवंबर का महीना आ रहा था और यमुना का जल शीतल होता जा रहा था। प्रायः गर्दन तक पानी में खड़े रहकर मैं कांपने लगता। मैं उस गीत का स्मरण करने लगता जो बचपन में मुझे बहुत प्रिय था। द रिवर जॉर्डन इज चिली एंड कोल्ड, इट चील्स द बॉडी बट वार्म्स द सोल। ठंडी की और बर्फीली है ऐसी जॉर्डन नदी, तन को ठिठुराती परंतु आत्मा को गर्माहट देती। मैंने सोचा, हाँ, एक सार्थक उद्देश्य के लिए कठिनाइयों को सहन करना भी आनंद है। बार बार डुबकी लगाते हुए मैं अपने तन मन और आत्मा के हो रहे शुद्धिकरण पर मनन करता। फिर मैं तारों से जगमगाते आकाश के नीचे शांत खड़ा होकर एक शुद्ध हृदय के लिए प्रार्थना करता। मेरा प्रत्येक दिन इसी ध्यान से प्रारंभ होता। उस समय मैं स्वयं को भगवान के अत्यंत निकट अनुभव करता। तत्पश्चात मैं तट पर वापस आता और लंगोट के अतिरिक्त शेष कपड़े उतारता और उन्हें निचोड़कर पुनः पहन लेता। फिर मैं वहां बैठकर तुलसी माला पर हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए ध्यान करता। प्रत्येक दिन इस प्रकार आरंभ होता। मैं प्रार्थना करता कि मैं इस अनुभव को कभी न भूलूं। मुझे नदी के तट को अपना घर बनाए लगभग 2 सप्ताह हो गए थे। एक संध्या जब अंधेरा छा रहा था, मैंने कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। आदरणीय पिताजी, मेरी लंबी खोज मुझे वृंदावन में ले आई है। अंततः मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मेरे हृदय को पूर्ण सत्य के रूप में आकर्षित कर रहा है। जिन परिस्थितियों को मैं खोज रहा था, मैंने अंततः उन्हें पा लिया है। पिछले 2 सप्ताहों में मुझे समझ आया है कि वृंदावन में पाने के लिए एक महान निधि है। विश्वास कीजिए, मैं यहाँ भोग विलास या छुट्टियां मनाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पूरी गंभीरता और निष्ठा से ऐसे मिशन को पूरा करने आया हूँ जिसकी उपेक्षा करना मेरे लिए संभव नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने पूरे जीवन भर आपको कभी कोई दुख नहीं दिया। कृपया विश्वास कीजिए, मेरे जीवन में इस यात्रा का बहुत महत्व है। आदर सहित रिचर्ड, वृंदावन, अक्टूबर 1971। एक दोपहर जब मैं यमुना के किनारे चल रहा था, निक्कर पहने हुए नंगे पैर छोटे लड़के और लहंगा चोली पहनी छोटी लड़कियां उन्मुक्तता से हंसते और उछल कूद करते हुए लकड़ी और गेंद से क्रिकेट खेल रहे थे। अन्य बच्चे पतली डंडियां लिए गायों, भैंसों, बकरियों और भेड़ों को झुंड को चरा रहे थे। सिर पर अनाज की टोकरियां उठाकर जाती स्त्रियां मुझे निकट आता देख लज्जावश अपने चेहरों को पल्लू से ढक लेती। मेरी दाईं ओर एक वृक्ष के नीचे बैठे कृष्णदास बाबा जी धीमे स्वर में भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने भूमि पर हाथ थपथपाते हुए अपने पास बैठने के लिए बुलाया। वहां पर हम एक नाविक को देखने लगे जो लोगों को नदी के पार उतार रहा था। तब बाबा जी ने कहा, इस इमली के वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का प्रिय मिलन स्थल है। उत्सुकतावश मैंने पूछा, बाबा जी यहाँ पर सभी राधा रानी से अत्यंत प्रेम करते हैं, कृपया मुझे उनके विषय में कुछ बताइए। राधा रानी का नाम सुनने मात्र उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। आंखें बंद करते हुए वे आगे झुके, साधु और शास्त्र हमें सिखाते हैं कि भगवान एक हैं, फिर भी उस एक भगवान के नर और नारी दोनों पक्ष हैं। श्रीकृष्ण पुरुष तत्व हैं और राधा रानी नारी सदृश शक्ति हैं। आध्यात्मिक जगत में एक ही भगवान इन दो रूपों में निवास करते हैं। राधा रानी प्रेयसी हैं और श्रीकृष्ण उनके प्रिय हैं। इन दोनों का प्रेम सभी प्रकार के प्रेमों का दिव्य स्रोत है। बाबा जी, मैंने पूछा, भगवान के इस नर नारी पक्ष के पारंपरिक प्रेम का इस संसार के प्रेम से क्या संबंध है? कृष्णदास बाबा जी ने उत्तर दिया, माया के पर्दे से ढके हम जीव भगवान के प्रति उस आनंदमय प्रेम को भूल जाते हैं जो हमारी आत्मा के लिए अत्यंत सहज है। इस संसार का प्रेम उस दिव्य प्रेम का मात्र एक प्रतिबिंब है। हम अनेक प्रकार से सच्चे प्रेम को खोज रहे हैं, किंतु हम भूल चुके हैं कि वो हमारे हृदय के भीतर ही विराजमान है। ये बताते हुए बाबा जी अति विनीत लग रहे थे। उनकी वाणी कांप उठी। श्रीकृष्ण अपने भक्तों के प्रेम द्वारा जीते जाने के लिए लालायित रहते हैं और राधा रानी की परम कृपा से हम उस प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। वे परम सत्य की करुणामयी स्वरूप हैं और समस्त आध्यात्मिक प्रेम की मूल स्रोत। राधा रानी के रहस्य ने मुझे मोहित भी किया और वो मेरे लिए दुर्ग्राह्य भी बन गया। मैंने इतना कुछ अनुभव किया, इतनी पुस्तकें पढ़ी, इतने साधुओं से मिला, किंतु किसी ने भी मुझे योग का सर्वोच्च गोपनीय रहस्य नहीं बताया। वो था भक्ति का रहस्य। और बाबा जी मुझे सिखा रहे थे कि इस रहस्य की संरक्षिका है श्रीमती राधा रानी। पहली बार मुझे ये दिखने लगा कि वृंदावन की ये साधु आध्यात्मिक मार्ग के सर्वाधिक गहन और गुह्यतम पहलुओं में प्रवेश कर चुके थे। क्या था वो रहस्य? सांसारिक भोग विलास और भगवान में विलीन होने की मुक्ति से परे है एक शाश्वत नृत्य, प्रणय की एक अंतहीन रात्रि और आत्मा के लिए परम आनंद की अवस्था। और एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही इस अपरिमित मधुर लोक में प्रवेश देने में सक्षम है। ये श्री राधा से संबंध स्थापित करने की ललक ही थी जिससे वृंदावन के ये योगी इतनी गंभीर और खरी दीनता का पालन कर पा रहे थे। योग सिद्धियों में भी सभी रुचियों को त्याग कर एक दिव्य प्रेम के सागर में डूबते प्रतीत हो रहे थे। भक्ति निस्वार्थ प्रेम का योग है और मेरा मन इसके समृद्ध धार्मिक दर्शन से मोहित हो गया था। ये मेरे मन के अनेक पूछे अनपूछे प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुझे एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान कर रहा था। भले ही अभी मैं किसी एक विशेष मार्ग पर समर्पित होने के लिए झिझक रहा था, मैंने अपने हृदय में भक्ति मार्ग का अनुसरण करने के लिए उमड़ती एक तीव्र उत्कंठा का अनुभव किया। तब कृष्णदास बाबा जी मुझे आशीर्वाद देकर चले गए। मैं वहां बैठा यमुना की ओर देखता हुआ भगवान के नारी स्वरूप के रहस्य पर मनन करने लगा। ईसाई धर्म में ईसा मसीह की माता मरियम की आराधना ने एक ओर दिव्य प्रेम को तथा दूसरी ओर वैमनस्य भरी गुटबंदी को जन्म दिया और मैरी मैग्डलिन से संबंधित रहस्यमयी घटनाओं ने छिपे हुए गुटों, गोपनीय संदेशों और षड्यंत्रों को उत्पन्न किया। अनेक हिब्रुओं और कबाला के कुछ अनुयायियों ने शेखिना को भगवान के नारी रूप या सब्बात की वधु के रूप में स्वीकार किया और इस्लाम में सूफी पंथ के कुछ अनुयायी हैं जो भगवान के नारी स्वरूप का सम्मान फातिमा का आदर करके करते हैं। और अभी मैं पा रहा था कि प्राचीन वैदिक शास्त्रों में भी सदैव भगवान के नारी स्वरूप को स्वीकार किया गया है। यमुना मैया की ओर देखते हुए मैं विचार करने लगा कि कैसे आध्यात्मिकता के करुणामय और पोषक पक्ष को दबाकर धर्म में प्रायः शक्ति और दूसरों पर नियंत्रण करने की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। मुझे समझ में आने लगा कि भगवान के नारी पक्ष पर चिंतन करना कितना महत्वपूर्ण है। उस समय मैंने आश्रम छोड़ा। लगभग उसी समय असीम ने भी आश्रम छोड़ दिया। शायद वहां के कठोर अनुशासन में वो दबाव अनुभव कर रहा था और मेरी जीवन शैली से प्रभावित था जो अनुशासित होने के साथ साथ बंधनों से मुक्त भी थी। हम प्रायः मिलकर वृंदावन में भ्रमण करते। एक भरी दोपहर जब असीम और मैं एक बरगद की छांव तले बैठे चर्चा कर रहे थे, हमें एक व्यक्ति की उपस्थिति का अनुभव हुआ। मुड़कर हमने पाया कि हमारे बिल्कुल निकट कोई बैठा था। कहाँ से आए थे वे? वे व्यक्ति एक ही साथ प्रौढ़ और युवा दोनों प्रतीत हो रहे थे। एक सफ़ेद सूती वस्त्र उनके पूरे तन को ढके हुए था। उनकी जटाएं गर्दन से नीचे लटक रही थीं। उनकी आंखें बड़ी थीं और गोल चेहरा दाढ़ी से ढका था एवं वे एक बालक के समान मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जो भी वृंदावन में प्रवेश करता है वो तुरंत श्रीकृष्ण से जुड़ जाता है। बाकी लोग भगवान की पूजा एक महान राजा के रूप में करते हैं, लेकिन ये वृंदावन? उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाई और वन की ओर हाथ फैलाया। कृष्ण का, श्रीकृष्ण का घर है घर। यहाँ हम उन्हें एक मित्र, एक बालक और एक प्रेमी के रूप में चाहते हैं। हमने वन की ओर देखा और हमें पेड़ों के पीछे दूर छिपा एक पशु दिखाई दिया जो जंगली नील गाय के समान था। सब कुछ जादुई लग रहा था। हम अचंभित हो उठे। उन्होंने कहा, प्रारंभ में हम भगवान को एक शक्तिशाली स्रष्टा, संहारक और संरक्षक मानकर उनसे प्रेम करना सीखते हैं, किंतु भगवान सर्वाधिक मधुर और परिपूर्ण प्रेमी भी हैं। शास्त्र बताते हैं कि वृंदावन में नटखट कृष्ण समस्त सुंदरता और मधुरता के सार हैं। फिर खड़े होते हुए रहस्यमय प्रकार से प्रकट हुए वे साधु बोले, आओ मैं तुम्हें वे स्थान दिखाऊंगा जिन्हें तुम कभी नहीं भूल पाओगे। हम आतुरता से उनके पीछे चलने लगे। वे जंगल से निकलकर नदी तट से होते हुए एक मंदिर से दूसरे की ओर जाने लगे। मार्ग में स्थानीय निवासी और मंदिरों के पुजारी उन्हें प्रणाम कर रहे थे। वे कहाँ चले गए? असीम ने अचानक पूछा। मैंने चारों ओर देखा, वे कहीं नहीं थे। हमने स्वयं को एक प्राचीन मंदिर में खड़ा पाया। असीम ने एक वृद्ध पुजारी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हमारे साथ आए वे साधु कौन हैं? पुजारी की आंखें फैल गईं और विस्मय से उसका मुख खुला का खुला रह गया। अरे, तुम्हें नहीं मालूम? वे हमें भीड़भाड़ से अलग एक एकांत कक्ष में ले गए और धीरे से बोले, वे श्रीपाद बाबा थे। कोई नहीं जानता कि उनकी उम्र कितनी है या वे कहाँ रहते हैं। वे एक बेघर साधु हैं। भगवान में लीन उन्मत्त अवस्था में वे रहस्यमय ढंग से घूमते रहते हैं। लगभग प्रतिदिन जब मैं और असीम एक साथ होते, श्रीपाद बाबा रहस्यमय ढंग से प्रकट हो जाते। वे कैसे हमें ढूंढ लेते? उन्होंने न तो मिलने पर कभी हमारा अभिवादन किया और न ही कभी जाते समय हमसे विदा ली। ऐसा लग रहा था कि मानो अपनी शक्ति से वे सदैव हमारे साथ रहते, कभी सदृश्य तो कभी अदृश्य। श्रीपाद बाबा को मानो पूरे वृंदावन और निकटवर्ती क्षेत्र के सारे पर्वतों, शिलाओं, पत्थरों, कंकरों और धूल के एक एक कण का ज्ञान था। हम अनेक दिन और कई बार तो रात भर भी उनके साथ घूमे। एक ठिठुराती हुई सर्द रात को जब मैं नदी तट पर विश्राम कर रहा था, मैंने श्रीपाद बाबा को नदी में खड़े देखा। बर्फीले जल में कंधे तक डूबे वे सूर्योदय तक प्रार्थना करते रहे। एक दिन प्रातः एक गली में सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक अधेड़ विधवा ने हमारा अभिनंदन किया। मैंने तुम्हें वन में श्रीपाद बाबा के साथ भ्रमण करते हुए देखा है, अब तुम मेरे साथ आओ। उनका शरीर भारी एवं कमर झुकी हुई थी। छड़ी का सहारा लेकर वे हर पग कठिनाई से ले रही थी। अपने घर की ओर लंगड़ा कर चलते हुए उन्होंने हमें श्रीपाद बाबा के अज्ञात इतिहास की एक कथा सुनाई। असीम ने उनके शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बहुत समय पहले जब बाबा विद्यालय में पढ़ते हुए एक बालक थे, वे और उनका मित्र कक्षा के बीच में ही पतंग उड़ाने का आनंद लूटने निकल जाते। वे रुकी और उनके चेहरे की झुर्रियाँ और गहरी हो गईं। अपनी छड़ी को सड़क पर दबाते हुए उन्होंने भौंहें सिकोड़ कर हमें घूरा और ऊंचे स्वर में बोली, एक दिन शिक्षक ने उन्हें थप्पड़ मारा और डांटा। उनका शरीर और वाणी अब कांपने लगी। उस छोटे से मासूम बालक को झटका लगा। वो समझ नहीं पाया कि उसने क्या गलती की थी। वो सोचने लगा कि यदि उस शिक्षक को इतना सब पढ़ने लिखने के पश्चात भी प्रेम करना नहीं आया तो ऐसी पढ़ाई का क्या लाभ। उसी क्षण उसने घर और विद्यालय को छोड़कर भगवान की खोज प्रारंभ कर दी। छोटी सी चाबी से अपनी ईंट की कुटिया के दरवाजे को खोलते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर हमारी ओर देखा। अंततः वे वृंदावन में एक संत के शिष्य बन गए। एक रात चार अन्य लोगों के साथ असीम और मैं श्रीपाद बाबा के साथ निर्जन वन में घूम रहे थे। रात के लगभग 9:30 बज चुके थे। यमुना के तट पर मेरे साथ एक साधु थे जिसकी कमर पर हाथ से बनी एक सितार बंधी थी। श्रीपाद बाबा ने उनका परिचय सितार के उस्ताद के रूप में दिया, जो उन्हीं के गुरु के शिष्य थे जिनसे विख्यात सितारवादक रविशंकर ने सितार सीखा था। लेकिन अब यह साधु बन गया है। शालीनता से सिर झुकाकर सितारवादक ने हमारा स्वागत किया और अपनी आंखें मूंद ली। दुधिया चांद के पीछे स्याह आकाश फैला हुआ था, जिसमें जड़ा प्रत्येक तारा एक विशेष आभा प्रस्फुटित कर रहा था। हमारे ऊपर स्थित यह सभी प्रकाश से भरे रत्न यमुना की चमचमाती लहरों पर नृत्य कर रहे थे। निकट ही कदम्ब की शाखाओं में छिपे रात के पक्षी कूज रहे थे और थोड़ी दूरी पर मोर पिहू पिहू कर रहे थे। रात में खिली चमेली की सुगंध से मंद बहती पवन महक रही थी। इस सब नीरवता के बीच सितार से मधुर स्वर उभरने लगे। एक प्राचीन राग के करुणा भरे दीर्घ स्वर वृंदावन के संगीत में सम्मिलित हो उठे। हर स्वर संगीतज्ञ की ईश्वर को पाने की ललक को व्यक्त कर रहा था। ये सुनते हुए मैं अभूतपूर्व अनुभव से भाव विह्वल हो उठा। मैं स्वयं को श्रीकृष्ण से इतना दूर पा रहा था। मुझे अपने हृदय में प्रेम का एक कण भी नहीं मिला, वंचित। मैं उस प्रेम के लिए तड़पने लगा, उसके लिए रोने लगा और याचना करने लगा। अचानक उस प्रेम के अभाव में संपूर्ण सृष्टि व्यर्थ लगने लगी और मेरी अभिलाषाओं को पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हुए सितार भी रोदन और विलाप करने लगा। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है।